प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अमृतसर में स्थित ऐतिहासिक जलियांवाला बाग स्मारक के रेनोवेटेड परिसर का वर्चुअल उद्घाटन किया।
जो रेनोवेशन का काम हुआ है उसने बलिदान की अमर गाथाओं को और जीवंत बना दिया है। यहाँ जो अलग अलग गैलरी बनाई गई है, जो दीवारों में शहीदों के चित्र उकेरे गए हैं, शहीद उधम सिंह जी की प्रतिमा है, वो सब हमें उस कालखंड में लेकर जाते हैं।
उन्होंने कहा कि जलियांवाली बाग जैसी ही एक और विभीषिका हमने भारत विभाजन के समय भी देखी थी।
भारत ने 14 अगस्त को हर वर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आने वाली पीढ़ियों को याद रखें, इसलिए इसे मनाने का फैसला किया है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आने वाली पीढ़ियों को भी याद दिलाएगी कि कितनी बड़ी कीमत चुकाकर हमें स्वतंत्रता मिली है।
लेकिन इसी दिन ही हरियाणा के करनाल जिले में खट्टर सरकार द्वारा किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तुलना किसानों और विपक्षी पार्टियों ने जलियांवाला बाग के खलनायक जनरल डायर से कर डाली। किसानों द्वारा अपने आंदोलन को फिर से तेज करने की मुहिम के कारण सरकार के साथ टकराव की स्थिति फिर से बनती नजर आ रही है। किसानों ने यह फैसला 27 और 28 अगस्त को हुए दो दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन में लिया, जिनमें 1500 से अधिक किसान यूनियनों ने दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर भाग लिया। शनिवार की सुबह किसानों ने करनाल में भारतीय जनता पार्टी के एक समारोह में नेताओं को जाने से रोकने के लिए चक्का जाम किया, जिसके फलस्वरूप उनकी पुलिस से भयंकर झड़प हुई और दर्जनों किसानों को गंभीर चोटें आईं। इस दौरान करनाल के SDM श्री आयुष सिन्हा का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो पुलिस को किसानों का सर फोड़ने का आदेश दे रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस घटना के बाद मीडिया से बात की।
अगर वो उन्होंने कोई प्रदर्शन करना था शांतिपूर्वक करते, कहीं कोई आपत्ति नहीं थी। पहले उनकी और एक समय में हमारी उनके अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उस शांतिपूर्वक प्रदर्शन में अगर वो पुलिस के ऊपर पत्थर मारते हैं, हाईवे को जाम करते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस को भी कुछ काम करना होगा। अब उसमें एक बातचीत करके बताएंगे कि किसकी जाति है, पुलिस की जाति है तो भी दंडित किया जाएगा, किसानों की जाति है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
श्री खट्टर के बयान से नाराज किसान नेताओं और विपक्षी पार्टियों ने इस सब के लिए खट्टर सरकार को ही दोषी बताया है। किसान नेता राकेश सिंह टिकैत ने घायल किसानों से बात करने के बाद मीडिया से भी बात की, जिसमें उन्होंने सरकार की तुलना तालिबान से कर डाली।
देश में सरकारी तालिबानों का कब्जा हो चुका है, देश में सरकारी तालिबानों के कमांडर मौजूद है, इन कमांडरों की पहचान करनी पड़ेगी। ये जो उसने आदेश दिया सिर्फ फोड़ने का, वही तो कमांडर है
करनाल में अभी सुबह।
हाँ तो करनाल में तो वो तो दिखाएंगे ना कि मैं सरकारी तालिबानों का कमांडर हूँ, मैं पुलिस फोर्स के दम पे यहाँ पे हूँ, और आए मेरे सामने किसान, पुलिस फोर्स की ताकत पे वो कब्जा करना चाहते हैं पूरे देश।
हरियाणा में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस घटना की तुलना जलियांवाला बाग में जनरल डायर द्वारा की गई गोलीबारी से करते हुए कहा।
आज भाजपा जजपा की कायर सरकार ने करनाल में बेरहमी और बर्बरता पूर्ण लाठी चार्ज कर एक बार फिर अंग्रेज के जनरल डायर की याद दिला दी। शांति प्रिय तरीके से विरोध कर रहे किसानों को जानवरों की तरह दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, दर्जनों लहू लुहान हो गए, सड़कों पर खून चल रहा था और सैकड़ों को चोटें आई।
भारतीय जनता पार्टी को इस घटना पर अपने खुद के लोगों का गुस्सा भी झेलना पड़ रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और मेघालय के राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक ने न केवल खट्टर सरकार को इस घटना पर फटकार लगाई है, बल्कि अपनी पार्टी को किसानों के बढ़ते गुस्से की चेतावनी भी दी है
कि ये लोग जो सरकारें चला रहे हैं, चाहे यहाँ या दिल्ली में, ये
इन इलाकों का मिजाज नहीं समझते हैं। अगर एक बार ये लड़ाई शुरू हो गई तो कोई पता नहीं है कितनी दूर तक जाएगी। देखिए साहब, 600 किसान मर चुके हैं, एक सिंपैथी का शब्द नहीं आया सरकारों की तरफ से, और इसका लोगों में कितना गुस्सा है अंदाज नहीं है। मुझे अंदाज है चूंकि वेस्टर्न यूपी के किसी भी गांव में बीजेपी का कोई नाम निहाद नेता घुस नहीं सकता है। यही है हालत हरियाणा की है, ऑलमोस्ट आधे राजस्थान की भी यही हालत है, पर पंजाब में आप हैं ही नहीं, तो आप क्या करना चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि आपका सब कुछ मटिया मेट हो जाए? तो जो इस कन्फ्रंट्रेशन को बढ़ा रहा है वो इस सरकार का दुश्मन है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या वो एसडीएम।
तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे श्री अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी श्रीमती रुजिरा बनर्जी के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड में हुई कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए समन जारी किए हैं। तृणमूल ने इसकी वजह भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में हुई करारी हार से उपजी खीज बताया है। डायमंड हार्बर से सांसद श्री बनर्जी ने एक रैली में भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देते हुए कहा,
मैं ये चुनौती देता हूं बीजेपी को कि आप लोग को लगता है कि थोड़ा बहुत डराने से, धमकाने से, चमकाने से ये बैठ जाएगा। भाई ये बंगाल की मिट्टी है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मिट्टी है, ये स्वामी विवेकानंद की मिट्टी है, ये रामकृष्ण परमहंस देव का मिट्टी है। तृणमूल कांग्रेस लड़ेगी और आने वाला चुनाव में वो हर राज्य में जहां पे जाएगा, एक बार जिस राज्य में, प्रदेश में तृणमूल कांग्रेस ने कदम रख दिया, मैं फिर से दोबारा चुनौती देता हूं अमित शाह को, चुनौती देता हूं, आपका हिम्मत है तृणमूल कांग्रेस को रोक के दिखाओ, हम आपसे वो स्टेट छीन के ले आएंगे।
भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक ने अपने अगस्त 27 के बयान में तालिबान से संबंधित एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अगस्त 27 को दिए गए अपने वक्तव्य में सुरक्षा परिषद ने तालिबान का हवाला हटाते हुए कहा, न किसी अफगान समूह या व्यक्ति को किसी अन्य देश के क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादियों का समर्थन करना चाहिए। शब्दों के इस बदलाव को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तालिबान के प्रति बढ़ती नरमी के प्रतीक के तौर पर लिया जा रहा है। सुरक्षा परिषद का यह कदम अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट खुरासान के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस्लामिक स्टेट ने काबुल एयरपोर्ट पर किए बम धमाकों की जिम्मेदारी ली है। तालिबान को इस्लामिक स्टेट का चिर प्रतिद्वंदी माना जाता है। आइए अब सुनते हैं खेल जगत के समाचार। दूसरा टेस्ट मैच 151 रन से जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम को हेडिंगले में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में करारी हार का सामना करना पड़ा है। पहली पारी में भारतीय टीम केवल 78 रन बना पाई थी, जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम ने 432 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था। हालांकि भारतीय टीम ने दूसरी पारी में तीसरे दिन की समाप्ति पर दो विकेट पर 215 रन बनाकर मैच बचा लेने की उम्मीद जताई थी, लेकिन चौथे दिन भारतीय टीम की पारी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। उसके बाकी के 8 विकेट मात्र 63 रन का इजाफा कर लुढ़क गए और इंग्लैंड ने मैच एक पारी और 76 रनों से जीत लिया। मैच के बाद पत्रकारों के सवाल लेते हुए कप्तान विराट कोहली ने इंग्लैंड की बेहतर गेंदबाजी की तारीफ की और अपनी खामियों पर भी नजर डाली।
बेसिकली उन लोगों ने हमसे काफी अच्छी बॉलिंग करी इस मैच में, और जैसे मैंने बोला कि कल हम लोगों ने काफी अच्छी बैटिंग करी पूरा दिन, गेम को चौथे दिन में उस सिचुएशन में लाने के लिए कि अगर हम और एक सेशन अच्छा खेलते सुबह मैं और पुजारा तो सिचुएशन थोड़ी और इजी बन जाती हम लोगों के लिए, लेकिन सुबह आके जो उन्होंने आज बॉलिंग करी है नई बॉल से, ये हमें एक्सेप्ट करना होगा कि हमारे लिए वो इतना इजी नहीं होने देंगे।
टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत 2 रजत पदक जीत चुका है और 1 कांस्य पदक का फैसला होना बाकी है। भावीना बेन पटेल ने टेबल टेनिस और निषाद कुमार ने ऊंची कूद में भारत को रजत पदक दिलाया, जबकि चक्का फेंक में विनोद कुमार को कांस्य पदक जीतने के बाद निर्णय की घोषणा पर रोक लगा दी गई। उनकी विकलांगता के वर्गीकरण पर उठे सवाल का उत्तर मिलने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। आज के समाचार यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए। SBS हिंदी सेवा के लिए नई दिल्ली से आप सबको मनन कुमार का नमस्कार।